पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतां, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यभट्टाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौवसाहूणं, तत्त्वं सल्लक्षणिकम् सन्मात्रं वायत स्वतः सिद्धं तस्मादनादिनिधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च। यह ग्रंथना श्री पंचाध्यायी है और उसको पढ़ते हुए अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 19 पर। 19। देखिए अभी जो हमने श्लोक 8 नंबर का जो पढ़ा है मंगलाचरण में, वहां द्रव्य की बात बताई है। द्रव्य के लिए तत्व शब्द आया था वहां पर। द्रव्य के लिए अन्य कौन कौन से शब्द आए थे याद है? हाँ, अन्वय, वस्तु, अर्थ, पदार्थ, सामान्य, धर्मी, देश, समवाय, समूह। ये द्रव्य के लिए बातें आई थी और द्रव्य वो स्वतः सिद्ध, अनादि, निधन, स्वसहाय, निर्विकल्प बताया था। फिर हमने गुण के लिए भी शब्द देखे थे, याद है गुण के लिए क्या क्या आया था? ये 15 नंबर के पृष्ठ पर है, आप नहीं थे ना तब। आप प्रेरणा बिना बताएंगे? शक्ति, लक्ष्मण,
हाँ,
गुण,
स्वभाव,
प्रकृति,
प्रकृति
शील और आकृति, ये गुण के लिए है। अब पर्याय के लिए जो शब्द आए हैं, एकार्थवाची शब्द आए थे कल, देखे थे हमने पेज नंबर 17 पर। 60 नंबर का जो श्लोक है उसके अर्थ में हमने देखा था, अंश पर्याय भाग, हार विध प्रकार, छेद भेद और भंग, भेद छेद और भंग, ये पर्याय के एकार्थी शब्द हमने देखे थे। अब यह वस्तु के अवस्थित और अनवस्थित पने का वर्णन यहाँ शुरू हुआ है 18 नंबर के पृष्ठ से। तो वहां ये बात हुई कि जो वस्तु है वो द्रव्य पर्यायात्मक है। द्रव्य जो वही का वही अंश कायम एक रूप त्रिकाल वो रहता है और पर्याय अंश वो बदलता है। द्रव्य अंश की अपेक्षा से पूरी वस्तु वैसी की वैसी है और पर्याय अंश के वो हर समय बदलती हुई दिखाई देती है, प्रतिक्षण बदलते हैं, यानी उसके कारण हम उसको अनवस्थित कहेंगे द्रव्य, और द्रव्य की अपेक्षा देखेंगे तो उसको अवस्थित कहेंगे वस्तु को, यानी वस्तु को अवस्थित और अनवस्थित देखने के ये दो नए है, दो दृष्टि है। अब नास्ति से इसी का वर्णन चलेगा। 19 पृष्ठ पर आए हम, 68, 69 और 70 के ऊपर जो लिखा है ना, नास्ति से इसी का कथन। यहाँ दो श्लोक इकट्ठे लिखे हैं, उसको हम पढ़ेंगे, 68 और 69। यदि पुनरेवम न भवति, भवति निरंशम गुणांशवद्रव्यम्, यदि वा कीलकवदिदम्, भवति न परिणामी वा भवेत् क्षणिकम्, अथ चेदिदमाकूतम् भवन्त्वनन्ता निरंशकांशा, तेषामपि परिणामो भवतु समांशो न तरतमांश स्यात्। यदि उक्त कथनानुसार वस्तु को द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा अवस्थित और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अनवस्थित नहीं माना जाता और इसके विपरीत तुम्हारा यह अभिप्राय हो कि स्वयं श्लोक में बताया कि तुम्हारा यदि ऐसा कहना हो तो वस्तु कैसी है, अवस्थित और अनवस्थित है, परंतु इससे अगर तुम विपरीत मानते हो, क्या मानते हो, एक नंबर, या तो द्रव्य गुणांश के समान निरंश है, यानी गुणांश यानी हम उसको अविभाग प्रतिच्छेद को गुणांश कहा, गुण का अंश यानी उसके भाव की अपेक्षा हमने अंश किए थे जिसको हम अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। यदि द्रव्य को गुणांश के समान निरंश अगर मानते हो अथवा परिणामी न होकर कीलक के समान नित्य है, यानी वो परिणमता नहीं है ऐसा अगर मानते हो, नित्य ही है ऐसा अगर मानते हो, क्योंकि वो तो कहते हैं ना ये तो पिष्ट पेषण क्यों कर रहे हो, या तो उसको द्रव्य कहो या पर्याय कहो, एक कुछ कह दो, एक कहने से बात चल जाएगी, लेकिन उसकी मान्यता में एक किसी को स्वीकार है दूसरे का स्वीकार नहीं है। दूसरा अंश जिसका नहीं हो उसको निरंश कहे, क्षेत्र की चौड़ाई की अपेक्षा निरंश हमने प्रदेश को कहा, और गुणों के जब हम निरंश अंश कहते हैं तो उसको हमने अविभाग प्रतिच्छेद कहा। यहाँ वो शब्द अभी आए नहीं है परंतु हमने पहले पढ़ा है ना, इसलिए पता है इसके लिए क्या आता है। तो कहते कि ये शंकाकार यदि ऐसा मानता है कि द्रव्य गुणांश के समान निरंश है अथवा परिणामी न होकर कीलक के समान नित्य है अथवा क्षणिक है, यानी पूरी वस्तु क्षणिक है, यानी सर्वथा नित्य सर्वथा अनित्य मानने वाली है, या चौथा पॉइंट अनंत निरंश अंश तो है पर उनका तरतम रूप परिणमन न होकर समान परिणमन होता है, तो यानी गुणों में तो अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है परंतु वो पर्याय में हीनाधिक नहीं होते, वैसे के वैसे पूरे के पूरे रहते, ऐसे अगर मानते हैं तो क्या आपत्ति होगी वो अभी बताएं। इसके लिए 70 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। एतत् पक्षचतुष्टयम् अपि दुष्टं दृष्टबाधितत्वाच्च तत्साधक प्रमाणा भावादिह सोऽप्य दृष्टान्ता। ये चारों पक्ष भी दूषित है, यानी द्रव्य को गुणांश के समान निरंश मानेंगे तो भी, अथवा परिणामी नहीं है सर्वथा नित्य है मानेंगे तो भी, सर्वथा क्षणिक मानेंगे तो भी, और जो तरतम रूप परिणमन नहीं है परंतु एक समान अगर मानेंगे, समान परिणमन मानेंगे, तो ये चारों ही पक्ष जो चारों ही बातें है वो दूषित है यानी दोष सहित है, क्योंकि एक तो ऐसा मानना प्रत्यक्ष से बाधित है यानी प्रत्यक्ष ऐसा दिखाई नहीं देता, दूसरे यानी दूसरी बात उनका साधक कोई प्रमाण नहीं पाया जाता, साधक ने उसको सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, और उस साधक प्रमाण का अभाव इसलिए है कि जहां साध्य साधन की व्याप्ति विषयक संदेह का निवारण किया जाए ऐसा कोई दृष्टांत नहीं मिलता। ये सब न्याय की भाषा है, जो बात सिद्ध करना है तो उसके लिए जो सिद्ध करने उसको कहेंगे साध्य, जिसके द्वारा सिद्ध करेंगे उसको कहेंगे साधन। तो साध्य साधन की व्याप्ति विषय, ये व्याप्ति ये भी न्याय का शब्द है, जैसे जहां धूम है वहां अग्नि होती है, ये जो व्याप्ति है ना, तो ऐसी यहां कोई संदेह का निवारण करने वाला कोई दृष्टांत यहां नहीं मिलता। अभी इसका भावार्थ है नहीं, इसको ही खोलकर समझाएंगे। द्रव्यातिक नय से वस्तु अवस्थित, अवस्थित यानी क्या देखा था हमने, वैसा कभी, और पर्यायार्थिक नय से अनवस्थित है, क्योंकि हर पर्याय में उसके जो गुणांश है वो तरतम रूप से पाएगा। इस प्रकार की प्रतीति होने के कारण द्रव्य गुण गुणांश कल्पना सार्थक है ऐसा पहले सिद्ध किया है, यानी द्रव्य का स्वरूप कैसा है उसको सिद्ध किया था। अब उसी को दृढ़ करने के लिए व्यतिरेक रूप से वहां को कहते हैं, देखो पहले तो वो स्टेटमेंट किया क्या है, अभी व्यतिरिक रूप से यानी वो तो नास्ती से ऊपर बताए ना, यानी उनकी जो मान्यता है उसको रूल आउट करेंगे हम। एक नंबर, शंकाकार पहले पक्ष में द्रव्य को निरंश अर्थात गुण पर्याय रहित मानना चाहता है, दूसरे पक्ष में गुण तो मानता है पर गुणांश नहीं मानता अर्थात कूटस्थ नित्य मानता है, तीसरे पक्ष में गुणांश तो मानता है पर गुण नहीं मानता अर्थात क्षणिक मानता है, चौथे पक्ष में क्योंकि गुण तो कायम रहते हैं ना तो द्रव्य भी कायम रहने का प्रसंग आएगा तो ये तो सर्वथा क्षणिक ही मानता है, चौथे पक्ष में गुण और गुणांश तो मानता है पर उसमें हीनाधिक परिणमन नहीं मानता, समान परिणमन मानता है। दृष्टांत द्वारा साधन व्याप्त साध्य रूप धर्म के मिल जाने से, यानी जो साधन साध्य में व्याप्ति पाई जाती है इसे साधन से व्याप्त साध्य रूप धर्म के मिल जाने से पक्ष की सिद्धि हुआ करती है, कोई भी बात सिद्ध करना है तो उस साध्य के द्वारा उसकी सिद्धि होती है। इस न्याय से उक्त चारों पक्षों के लिए किसी दृष्टांत का मिलना ही असंभव है, इसलिए साधक प्रमाण के न मिलने से उक्त कथन ठीक नहीं है, यानी वो उसको जो साध्य नहीं वो तो सिद्ध भी करना चाहिए तो उसके लिए ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि केवल प्रतिज्ञा मात्र से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, किसी अन्य मतियों ने अपना कुछ मत प्रस्तुत किया परंतु वो सिद्ध भी तो होना चाहिए, तो केवल वो प्रतिज्ञा की यानी उन्होंने केवल एक स्टेटमेंट कर दिया तो उससे तो साध्य की सिद्धि नहीं होती। भाई अभी एक एक को ये रूल आउट करेंगे, यदि द्रव्य को निरंश माना जाए, उन्होंने माना था ना, यानी उसमें गुण पर्याय का भेद न रहेगा, यदि द्रव्य को ही निरंश मानते हैं तो गुण पर्यायों का भेद न रहेगा, बिना विशेष के सामान्य तो कुछ रहता ही नहीं, गुण पर्याय यानी गुण पर्याय को हम जिसको पर्याय कहते हैं अर्थ पर्याय जिसको कहेंगे वही गुण पर्याय है, तो कहते उनका भेद ही नहीं पाया जाएगा क्योंकि द्रव्य को निरंश माना गया है। देखो यहाँ अंश यानी वो हमने गुणों के अंश की कल्पना की थी, उसमें अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं और प्रत्येक पर्याय में हीनाधिक होते हैं, इन्होंने तो अंश ही नहीं माने हैं, अंश ही नहीं मानेंगे तो गुण पर्याय का कोई भेद ही नहीं रहेगा, यानी वहां कोई विशेष ही पाए नहीं जाएंगे, ये बात कहना चाहते। सेकंड पॉइंट, यदि द्रव्य को नित्य माना जाए तो उसमें कोई विक्रिया नहीं हो सकती, विक्रिया ने विशेष क्रिया परिणमन नहीं हो सकेगा, द्रव्य सर्वथा नित्य हो जाएगा, विक्रिया के अभाव में तत्व ये एक एक कॉमा लगाना है, क्रिया फल कारक कारण कार्य इत्यादि की व्यवस्था कुछ भी नहीं ठहर सकती, यानी द्रव्य को सर्वथा नित्य मान लिया तो उसमें कोई उसके क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी तो उसके कुछ कारक नहीं होंगे, कारक नहीं होंगे तो कारण भी नहीं होगा, क्योंकि जहां पर्याय वहां कारण की चर्चा आती है, उसका फल की भी बात नहीं होगी, कार्य भी नहीं होगा तो कोई भी व्यवस्था नहीं पाई जाएगी। आगे देखिए 422 से 26
यहां विक्रिया का अर्थ विशेष क्रिया
यानी पर्याय, वही बताया
तो क्या क्या होता है
तो आगे 422 पृष्ठ से 426 तक इसकी चर्चा आने वाली है। अब तीसरा पॉइंट जो उन्होंने माना था क्षणिक, तो सर्वथा क्षणिक मानने में प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता, ये प्रत्यभिज्ञान मालूम है सुशीला बेन क्या होता है? हाँ जोड़ रूप ज्ञान, हमने सामने कोई चीज देखी तो पहले हमने जो कुछ देखा था पहले किसी वस्तु का ज्ञान हुआ था उस वस्तु के साथ हमने इसको मिलान करके देखा, तो हमारे पास भी ऐसी थी मगर वो ग्रीन कलर की थी, ये भी प्रत्यभिज्ञान हुआ, या ऐसे के ऐसे मेरे पास है, ये भी प्रत्यभिज्ञान कहलाएगा। तो पहले जो कोई जानी हुई चीज और सामने कोई वही चीज हो या अन्य चीज हो, हाँ, तो वो पहले वाले का इसके साथ वो जोड़ रूप जो ज्ञान हो जाता है उसको कहेंगे प्रत्यभिज्ञान। तो सर्वथा क्षणिक ही वस्तु को मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञान का सवाल कहाँ आया, क्योंकि क्षण मात्र के लिए है वो तो नष्ट हो गया। मैंने एक पूरा वाक्य भी बोलेंगे तो उसका मीनिंग नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम एक वाक्य पूरा बोलते हैं तो जो हमने शब्द सुने हैं उसका कुछ ज्ञान है और सबका मिलकर हम अर्थ उसका हम कुछ हमें भाषित हो जाता है। राम ने आम खाया तो ये तीन शब्द बोले तो रा कहने तक फिर वो चला गया, फिर मैं कहा तो उसका कुछ जोड़ ही नहीं होगा किसी के साथ। कार्य कारण हेतु फल भाव भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्षणिक ही है ना, फिर उसमें कार्य और क्या होगा, वस्तु को ही क्षणिक मान लिया हूं। इसके लिए आगे देखिए 429 से 432 तक। हाँ, कार्य कारण हेतु फल अभी चौथा नंबर, यानी अनंत निरंश अंश तो माने उसने परंतु उसमें तरतमता नहीं मानी। तो कहते यदि अनंत निरंश अंश मानकर उनका समान परिणमन माना जाए, तरतम रूप न माना जाए, यानी उसमें हीनादिक जो है पर्याय उनके जो अविभाग प्रतिच्छेद हीनादिक पाए जाते हैं उसको अगर नहीं मानेंगे तो द्रव्य सदा एक सा अवस्थित रहेगा, एक सा नहीं अवस्थित, वैसा का वैसा रहेगा, उसमें अवस्था भेद न हो सकेगा। सिद्ध संसारी का भेद मिट जाएगा, यानी कोई बात ही नहीं, नहीं जैसा है वैसे अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। इसलिए उपरोक्त चारों ही विकल्प काल्पनिक प्रत्यक्ष मिथ्या है, यानी वो प्रत्यक्ष से उसको सिद्ध करते कि ये झूठ है। उनमें अनेक बाधाएं आती है और वस्तु प्रत्यक्ष वैसी है ही नहीं।
काल्पनिक के बाद एक कॉमा दे देना।
हाँ, विकल्प काल्पनिक और प्रत्यक्ष मिथ्या है।
हम कॉमा बोलते हैं, आप कोमा में डाल दीजिए
गुजराती कोमा।
अल्प विराम, आराम विराम।
अभी 20 पृष्ठ पर आते हैं। नोट, वस्तु निरूपण महाअधिकार में वस्तु का निरूपण यानी वस्तु का कथन चल रहा है, वस्तु कैसी है उसकी चर्चा चल रही है, उसमें उसके अधिकार में अभी हमारा जो चल रहा है। अखंड द्रव्य का निरूपण करने वाला पहला अवांतर अधिकार समाप्त हुआ। इस अधिकार की मूल भित्ति श्लोक नंबर 8 है, यानी श्लोक नंबर 8 के आधार से ये पूरा ही समझाया गया है, मूल आधार उसका, यानी अखंड द्रव्य का निरूपण यहाँ तक हुआ। अब दूसरा अवांतर अधिकार, अवांतर यानी जो सब डिविजन हम कहेंगे उसके, पहला तो पूरा महाअधिकार है, वो महाअधिकार के जो भेद है उसको अवांतर अधिकार कहते हैं। इसके लिए हम 71 नंबर को यहाँ पढ़ेंगे। यानी द्रव्य का भेद दृष्टि से निरूपण चलेगा 71 से लेकर 102 नंबर के श्लोक तक, उसमें से 71 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। द्रव्यत्वं किन्नाम पुष्ट चेतीह केन चित्सुरे प्राह प्रमाण सुनयै अधिगतमिव लक्षणं तस्य। किसी आचार्य ने आचार्य से पूछा कि महाराज द्रव्यपना क्या पदार्थ है, किन नाम द्रव्यत्वम, द्रव्यपना क्या चीज है, किसको कहेंगे द्रव्यपना। ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य उस द्रव्यपने का प्रमाण और सुनयों द्वारा, सुनय यथार्थ नय, क्योंकि नय कहने से कभी कभी वो तो खोटे उपनय भी होते हैं, मिथ्या नय भी होते हैं जो नया आभास भी कहलाता है, तो तो कहते हैं प्रमाण और नयों के द्वारा, यानी प्रमाण और सुनयों के द्वारा अच्छी तरह मनन किया हुआ लक्षण कहने लगे। यानी पहले में पहले ये द्रव्यपना क्या चीज है ऐसा पूछने पर उसके अर्थ में अभी आगे की बातें आ जाएगी। 72 नंबर, गुण पर्यवद्रव्यम लक्षणमेतत् सुसिद्धम अविरुद्धम गुणपर्यय समुदायो द्रव्यम पुनरस्य भवति वाक्यार्थ। हमने सूत्र में पढ़ा है गुण पर्यवत द्रव्यम, कहाँ पढ़ा है? तत्वार सूत्र जिसमें गुण पर्याय पाए जाए वह द्रव्य है। यह द्रव्य का लक्षण अच्छी तरह सिद्ध है, इस लक्षण में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। गुण पर्याय जिसमें पाए जाए वह द्रव्य है। इस वाक्य का स्पष्ट अर्थ यह है कि गुण और पर्यायों का समुदाय ही द्रव्य है। वर्तमान में कहेंगे तो सभी गुण उसमें आ गए, क्योंकि वो कैसे होते? सहवर्ती होते। सहवर्ती समझते हैं? एक साथ एट ए टाइम सभी पाए जाते हैं। और पर्याय कैसे होते? क्रमवर्ती होते, एक के बाद एक होते। अनादि अनंत पर्यायों का क्रम प्रत्येक द्रव्य में सुनिश्चित है, उसका अपना अपना है, उसको कोई बदलता नहीं है, बस है। अनंत द्रव्य है, वो प्रत्येक अनंत द्रव्य में अपना अपना निश्चित पर्याय का क्रम जो विशिष्ट उसका अपना अपना है।
सहवर्ती जो बताया है, वो वर्ती का अर्थ रहना, वर्ती वर्तना रहना, सहवर्तियां एक साथ रहना, सहकार सोसाइटी होती है। और क्रमवर्ती यानी क्रम से वर्तक के हैं वे उपर्या।
देखो ये ऊपर हम पढ़ रहे थे, गुण और पर्यायों का समुदाय ही द्रव्य, यहाँ तक पढ़ा था ना। द्रव्य के इस लक्षण में प्रत्यक्ष कॉमा लगाना, अनुमान या आगम आदि किसी भी प्रमाण से विरोध नहीं आता। ये सब प्रमाण के भेद है, हमारे यहाँ अभ्यास नहीं हुआ है, वो तो स्मृति प्रत्यय विज्ञान अनुमान तर्क वगैरह वगैरह आगम, ये सब प्रमाण के ही भेद है। तो कहते प्रत्यक्ष अनुमान या आगम आदि किसी भी प्रमाण से विरोध नहीं आता, यानी ये सही लक्षण है, इसलिए यह सुसिद्ध यानी अच्छी तरह से सिद्ध और अविरुद्ध कहा गया है, यानी इसमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। भावार्थ, गुण पर्याय व द्रव्यम इस वाक्य में मत प्रत्यय है। अभी वो तो संस्कृत का व्याकरण है, वो छोटा, उसका ऐसा अर्थ निकलता है कि गुण पर्याय वाला द्रव्य है। वत द्रव्यम लिखा ना, यानी वाला। इस कथन से कोई यह न समझ लेवे कि गुण पर्याय कोई दूसरे पदार्थ है जो कि द्रव्य में रहता है। जैसे नहीं कहेगा वो दंडी टोपी वाला चश्मे वाला, वो भिन्न नहीं है, और उन दोनों का आधार वो द्रव्य कोई दूसरा पदार्थ है। यानी गुण पर्याय कोई अन्य चीज है और उसका आधार द्रव्य कोई अन्य चीज, ऐसा है नहीं। इस अनर्थ अर्थ के समझने की आशंका से आचार्य नीचे के चरण से स्वयं उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हैं। यानी कोई ऐसा नहीं समझे गुण पर्याय व द्रव्य में, जिसने द्रव्य अलग है उसने गुण पर्याय को धारण किया है, ये कोई गलत अर्थ नहीं निकाले। इसलिए सेकंड लाइन, श्लोक की सेकंड लाइन, उसको नीचे के चरण कहा, क्या लिखा? गुण पर्याय समुदायो द्रव्यम पुनः अस्य भवति वाक्यार्थ, इसका वाक्यार्थ ऐसा है, ऐसा करके सेकंड लाइन में उसका वाक्यार्थ भी बता दिया। तो कहते नीचे के चरण से यानी श्लोक के सेकंड लाइन में स्वयं उस वाक्य का स्पष्ट अर्थ करते हैं कि गुण पर्याय वाला द्रव्य है, अथवा गुण पर्याय जिसमें पाए जाए वह द्रव्य है। इन दोनों का यही अर्थ है कि गुण पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। गुणों का समूह तो ले लिया हमने, परंतु अनादि अनंत पर्याय में जो विविधता पाई जाती है वो भी वो द्रव्य का ही अंग है। तो गुणों और पर्यायों का समूह है वो द्रव्य है। यह बात
अभी हम जो पढ़ रहे बाबा उनके चौथे में है, गुण पर्याय वाला द्रव्य है, ये इनकी इन्वर्टेड कॉमा लिखा है और उसके बाद अर्थात और द्रव्य है के बाद कॉमा पूरा हुआ, उसकी शुरुआत गुण पर्याय जिसमें पाए जाते हैं अथवा के बाद इनके इन्वर्टेड कॉमा चालू होता है,
डबल इन्वर्टेड वहां से अथवा करके दूसरी भी परी, मैंने उसी का दूसरा अर्थ बताया,
दो प्रकार से उसको डिफाइन किया।
हाँ, गुण पर्याय जिसमें पाए जाए। आगे पढ़ेंगे, देखो यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड ही द्रव्य है और वे गुण प्रतिक्षण अपनी अवस्था को बदलते रहते हैं, क्योंकि हमने पहले तो द्रव्य की चौड़ाई सिद्ध की थी, उनके देश कहा था उसको, और उसके एक एक जो अंश है निरंश है उसको हमने प्रदेश कहा था, वो हिनादिक प्रदेश वाले अलग अलग द्रव्य बताए थे। फिर हमने कहा कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, इन द्रव्य में नहीं गुणों का समुदाय को ही हम द्रव्य कहते हैं, और ये जो प्रत्येक गुण है वो प्रति समय परिणमन कर रहा है, इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों को लिए हुए जो गुणों का अखंड पिंड है वह द्रव्य। ये द्रव्य की सही परिभाषा कैसी हो गई, हम तो अभी तो सीखे थे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और प्रत्येक गुण हर समय परिणमन कर रहा है, तो अभी परिभाषा कैसी हुई कि त्रिकालवर्ती पर्यायों को लिए हुए, यानी प्रत्येक गुण को किस रूप में लिया, उस गुण की त्रिकालवर्ती पर्याय लेना एक एक गुण की, और ऐसे गुण कितने तो अनंत है, इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों को लिए हुए जो गुणों का अखंड पिंड है वह द्रव्य। गुण पर्याय से पृथक कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है, इसी बात को स्पष्ट करते हुए किन्हीं आचार्यों का कथन प्रकट करते हैं। ये ख्याल में आई ना बात, हम तो ये तो जो हम सिद्धांत रोशिका में तो बिगिनिंग है, बिल्कुल प्राथमिक है, तो वहां तो गुणों के समूह को कह दिया और आगे गुणों के विशेष परिणमन को वो तो पर्याय कहते वो भी बता दिया, परंतु यहाँ हम पूरा अखंड द्रव्य देखना है, तो अखंड द्रव्य जब हम देखेंगे तो उसमें उसके तो सभी प्रदेश तो आ ही गए, सभी अनंत गुण भी आ गए और वो प्रत्येक गुण की त्रिकाल की सभी अनादि अनंत की पर्याय भी उसमें सम, तब जाके वो पूरा द्रव्य अखंड ऐसा हम कहेंगे। पर भगवान ने सभी द्रव्यों को इसी रूप में जाना। 73 नंबर, गुण समुदायो द्रव्यम लक्षणमेतावता प्युषन्ति बुधा समगुण पर्यायो वा द्रव्यम कैश्चिन् निरूप्यते बुद्धि। कोई कोई बुद्धिधारी गुण समुदाय ही द्रव्य है ऐसा भी द्रव्य का लक्षण कहते हैं। किन्हीं विशेष अनुभवी वृद्ध पुरुषों द्वारा संपूर्ण गुण पर्यायों के बराबर ही द्रव्य कहा गया है। भावार्थ, पहले श्लोक में गुण और पर्याय दोनों को ही द्रव्य का लक्षण बतलाया गया था, परंतु यहाँ पर पर्यायों को गुणों से पृथक पदार्थ न समझकर गुण समुदाय को ही द्रव्य कहा गया है, क्योंकि पर्याय वो गुणों में अंतर्भूत कर दिए, इसलिए गुण समुदाय गुणों का समूह भी कह देते। वास्तव में गुणों की अवस्था विशेष ही पर्याय है, यानी गुणों को हम सामान्य कहेंगे तो उसकी विशेष जो है पर्याय है, उसी की अवस्था विशेष है। गुणों से सर्वथा भिन्न पर्याय कोई पदार्थ नहीं है, और पर्याय वो ही है वो जो गुण में जो कोई उसकी जो स्वभाव प्रकट है, गुणों का जो कोई है वही तो पर्याय में है उसका, गुणों से भिन्न तो कुछ है ही नहीं, केवल उसके अंश हीनादिक उसमें प्रकट है। इसलिए गुण पर्याय में अभेद बुद्धि रखकर गुण समुदाय ही द्रव्य कहा गया है, यानी वो कोई गलत बात नहीं है, गुण और पर्याय को अभेद करके गुणों के समुदाय को समूह को द्रव्य कहते हैं, ये भी इन्हें वो गुणों में अंतर्भूत कर दिया क्योंकि वो गुणों की अवस्था है। गुणों की अवस्था होने के कारण वो उसी के विशेष है, तो उसी के अंतर अंतर्भूत हो जाते हैं और गुणों के समूह को कहेंगे भी तभी वे गलत तो है ही नहीं है। अब 74 नंबर, कोई संपूर्ण गुण और उनकी त्रिकालवर्ती संपूर्ण पर्यायों को ही द्रव्य कहते हैं। यानी ये कथन में जो कोई कोई अलग अलग बातें है, कोई आचार्य ऐसा कहते हैं, कोई ऐसा, परंतु वो भी सही कथन है, ये बात यहाँ बता रहे हैं। 74 नंबर, अयमत्राभिप्रायो ये देशास्तद्गुणास्तदंशाश्च एकालापेन समं द्रव्यं नाम्ना तेव निःशेषम्। उपर्युक्त कथन का यह अभिप्राय है कि जो देश है यानी प्रदेश है, उन देशों में रहने वाले जो गुण है, पहले हमने सिद्ध किया था, पहले द्रव्य की चौड़ाई सिद्ध की थी, द्रव्य कितना फैला है, पूरे द्रव्य को देश कहा था और उसके अंशों को देशांश या प्रदेश कहा था, और वो देशांश या प्रदेश है, ये पूरा देश कैसा है, तो गुणों से सहित है ऐसा कहा था। यही बात बता रहे हैं कि जो देश है उन देशों में रहने वाले जो गुण है तथा उन गुणों के जो अंश है, गुणों के अंशों को हम अविभाग प्रतिच्छेद कहा था, उन सब की यानी प्रदेश प्लस गुण और गुणांशों की एक ही शब्द द्वारा द्रव्य संज्ञा है। यानी द्रव्य कहने से उसकी चौड़ाई भी आ गई, उसके सब देश भी आ गए, उसके अंदर उसके सब गुण भी आए, गुणों के वो अंश भी आ गए। यहाँ देश यानी देशांश को भिन्न भिन्न न कहकर दोनों ही जगह मूल गाथा में देशाहा शब्द का प्रयोग किया गया है। देशाहक है ना, प्रदेश है, पहले बताया था कहीं कहीं देश के लिए प्रदेश और प्रदेश के लिए देश शब्द भी आता है, क्योंकि देश है कहकर उन्होंने अनेक वचन बताया था यहाँ पर। अब 75 नंबर पढ़ेंगे पेज, सॉरी श्लोक 21 नंबर के पृष्ठ पर। नहि किंचित् सद्रव्यम् केचित् संतो गुणा प्रदेशाश्च केचित् संति तदंशा द्रव्यम् तत्सन्निपातात्वा। ऐसा नहीं है कि द्रव्य कोई जुदा पदार्थ हो, गुण कोई जुदा पदार्थ हो, प्रदेश जुदा पदार्थ हो, एक ही वस्तु को उसका जो चौड़ा है, विस्तार है, क्षेत्र है, उसको देश कहते और वही गुण सहित होते हैं, परंतु ये कोई भिन्न भिन्न चीजें नहीं है, एक ही वस्तु है। तो कहते कि ऐसा नहीं है कि द्रव्य कोई जुदा पदार्थ हो, गुण कोई जुदा पदार्थ हो, प्रदेश जुदा पदार्थ हो, और उन गुणों के अंश कोई जुदा पदार्थ हो, और उन सबके मिलाप से द्रव्य कहलाता हो, ऐसा नहीं है, ये पहले बताना चाहते। अब 76 पढ़ेंगे, वो करेक्शन कहाँ किया है हमने, हाँ हाँ नीचे पहली लाइन में, क्योंकि वो साइड में तो दिखता है कहाँ का करेक्शन किया, वो नहीं दिखा। पहले लाइन में जो लास्ट में जैसे भित्ति में चित्र होता है वो मित्ते में हुआ था, मैं श्लोक में देख रही थी कहाँ के करेक्शन, श्लोक तो बराबर है। पढ़ेंगे हम 76 को।
अथवापि यथा भित्तौ चित्रं द्रव्ये तथा प्रदेशाश्च सन्ति गुणाश्च तदंशाः समवायित्वा तदाश्रयात् द्रव्यम्।
अथवा ऐसा भी नहीं है कि, क्या नहीं है वो बता रहे, कि जिस प्रकार भित्ति में चित्र खींचा रहता है, अर्थात जैसे भित्ति में चित्र होता है वह भित्ति में रहता है परंतु भित्ति से जुदा पदार्थ है। कोई दीवार पर भित्ति पर ड्राइंग बनाया, वो दीवार में बनाया है या वो भित्ति में बनाया है परंतु भित्ति से जुदा पदार्थ है। उसी प्रकार द्रव्य में प्रदेश गुण और उन गुणों के अंश रहते हैं, ऐसा नहीं है, पहले बता चुके हैं। और भित्ति की तरह समवाय संबंध से उनका आश्रय द्रव्य है, यानी प्रदेश गुण और गुणों के अंश भिन्न हो और द्रव्य गुण भिन्न हो और उनका समवाय संयोग होकर ये वस्तु बनी हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने पहले देखा था कि कोई ऐसे समवाय से मानने वाले भी अन्यमति है। भिन्न भिन्न पदार्थों के घनिष्ठ नित्य संबंध को समवाय संबंध कहते हैं। गुणगुणी को भिन्न मानकर उनका नित्य संबंध नैयायिक दर्शन मानता है, उनका संबंध मानता है, यानी वो दो जुदे जुदे हैं और इकट्ठे हुए हैं, दो भिन्न चीजें हैं और उनके संयोग से समवाय से ये एक हुए, ऐसा मानता है भावार्थ। ऐसा नहीं है कि देश देशांश, देश यानी पूरा जो विस्तार है द्रव्य का जितना फैला है, और देशांश यानी उसके प्रदेश, गुण और गुणांश, गुण तो समझते हैं, गुणांश यानी उसके जो अभिभाग प्रतीचे जितने प्रकट है, चारों ही जुदे जुदे पदार्थ हो और उनका समूह द्रव्य कहलाता हो, ये ऐसा नहीं है, ये बात बता चुके हैं, किंतु चारों ही अखंड रूप से द्रव्य कहलाते, ये चारों का अखंड ही द्रव्य है। ऐसा नहीं कि द्रव्य नाम की कोई अलग चीज है और उसमें ये पाए जाते हैं। भेद विवक्षा से ही चार जुदी जुदी संज्ञाएं कहलाती हैं। उसमें भेद बताना है, हमको समझना है, इसलिए चार अलग अलग नाम बताए उसके। अभेद विवक्षा से चारों ही अभिन्न हैं। हम अखंड द्रव्य की बात करेंगे अभेद की, तो चारों अभिन्न हैं और चारों की उस अभिन्नता को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को समझने के लिए हमने उसमें भेद पाठ देश देशांश गुण गुणांश की बातें हमने देखी, परंतु है तो वस्तु रूप से एक अभेद। 77 इदमस्ति यथा मूलम स्कंध शाखा दलानि पुष्पाणि गुच्छा फलानि सर्वाणि हे कालापात्तदात्मको वृक्ष। आलापेने कथन सर्वाणी, कितनी कितनी बातें बताए ना, मूल है, स्कंद है, शाखा है, दल है, पुष्प है, फल गुच्छ है, फल है वगैरह वगैरह। देखो हम यहाँ पढ़ेंगे, जिस प्रकार जड़, मूल यानी जड़, स्कंद ट्रंक जो बड़ी है, शाखा यानी बड़ी बड़ी डालियां, पत्ते, पुष्प, गुच्छा, फल, सभी मिलाकर एक शब्द से वृक्ष कहते हैं, क्योंकि वह वृक्ष उन, यहाँ स्पेस चाहिए, मूलादि मय है, उन मूलादि ने, उन मूलादि मय, मूल आदि मय, उस मय है, यानी मूल मय, मूल स्कंद शाखा पत्ते वगैरह मय है वृक्ष। जड़ स्कंद शाखा आदि से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, वृक्ष के बाद कॉमा नहीं चाहिए, पढ़ते समय रुक के पढ़ेंगे, परंतु वृक्ष क्या है, जड़ स्कंद शाखा से आदि कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, किंतु इनका समुदाय ही वृक्ष कहलाता है, अथवा वृक्ष को छोड़कर शाखादिक भिन्न कोई पदार्थ नहीं है, वो वृक्ष का ही पार्ट एंड पार्सल है, उससे ही वो पूरा बना है। इसी प्रकार देश देशांश गुण गुणांश का समूह ही द्रव्य है। द्रव्य से भिन्न न तो देशादिक ही है और देशादिक से भिन्न न द्रव्य ही है, यानी द्रव्य को छोड़कर वो कहीं नहीं पाए जाएंगे, ऐसे ही वो तो द्रव्य देश देशांश। 78 यद्यपि भिन्नो भिन्नो दृष्टान्तः कारकश्च भवतीह ग्राह्यस्तथाप्यभिन्नो साध्ये चास्मिन् गुणात्मके द्रव्ये। यद्यपि दृष्टान्त और कारक भिन्न भी होते हैं और अभिन्न भी होते हैं, एक कारक की तो बात मालूम है, भिन्न कारक और अभिन्न कारक। ये षट कारक हो गए, तो उसमें भिन्न कारक क्या है और अभिन्न कारक क्या है?
भिन्न कारक माने निश्चय से वो जो करता है वही कर्म है, वही कारण है, ऐसा
यानी एक ही द्रव्य में सिद्ध करेंगे तो वो षट कारक यानी अभिन्न कारक हो। और ये कुमार करता है, घड़ा उसका कर्म है, वो तो हर एक हमने उसका साधन अलग, भिन्न भिन्न द्रव्य में उसकी सत्ता जुदी जुदी है, उसको भिन्न कारक कहेंगे, उसको व्यवहार कारक कहेंगे, अन्य अन्य पदार्थों में सिद्ध किया। ये तो दृष्टांत के लिए तो हो सकेगा ना भिन्न भिन्न। तो कहते यद्यपि दृष्टांत और कारक भिन्न भी होते हैं और अभिन्न भी होते हैं, यहाँ गुण समुदाय रूप द्रव्य की सिद्धि में अभिन्न दृष्टांत और अभिन्न ही कारक ग्रहण करना चाहिए। खुलासा आगे किया जाता है, जैसे कारकों में भिन्न अभिन्न है, वैसे गुणों के समुदाय रूप जो द्रव्य है उसमें वो भिन्न भिन्न नहीं ग्रहण करना है, अभिन्न ही ग्रहण करना है। अब इसके लिए वो सिद्ध करेंगे यहाँ 19 नंबर के श्लोक के द्वारा। भिन्नोऽप्यथ दृष्टान्तो वित्तौ चित्रं यथा ददीह घटे भिन्नः कारक इति वा कश्चित् धनवान धनस्य योगेन। आधार आधेय की भिन्नता का दृष्टांत इस प्रकार है। आधार यानी वो समझते हैं किसी के सपोर्ट, आधेय यानी जिसको आधार लिया जाता है वो आधेय, जिसने आधार लिया है वो आधेय। जैसे हम चटाई के आधार से बैठे वो आधार है, जो बैठे वो आधेय हो गए। भीत के ऊपर चित्र खींचा है, भीत आधार हुई, चित्र है वो आधेय। तो कहते आधार आधेय की भिन्नता का दृष्टांत इस प्रकार है, जैसे भित्ति में चित्र होता है अथवा घड़े में दही रखा है, तो भित्ति भिन्न पदार्थ है और उस पर खींचा हुआ चित्र दूसरा पदार्थ है। इसी प्रकार घट दूसरा पदार्थ है और उसमें रखा हुआ दही दूसरा पदार्थ, दो भिन्न भिन्न द्रव्य है। इसलिए ये दोनों ही दृष्टांत आधार आधेय की भिन्नता में है। भिन्न कारक का दृष्टांत इस प्रकार है, जैसे कोई मनुष्य धन के निमित्त से धन वाला कहलाता है। यहाँ पर धन दूसरा पदार्थ हो और पुरुष दूसरा पदार्थ है, पर हमने दंडी का उदाहरण लिया था, चश्मे वाला कहेंगे, टोपी वाला कहेंगे, तो भिन्न भिन्न दो पदार्थ। धन और पुरुष का स्व स्वामी संबंध कहलाता है, यानी धन वो पुरुष का धन है ना, वो धन का वो पुरुष स्वामी है, यहाँ उसका स्व स्वामी संबंध बताया। यह स्व स्वामी संबंध भिन्नता का है, ये कारक में इसको ले लिया हमने, संबंध कारक ले लिया है। वैसे तो वस्तु में जो कार्य होता है उसमें वो संबंध कारक नहीं लगाते, कारक यानी वो जो विभक्ति होती है ना अलग अलग, उसमें ये संबंध नाम की कौन सी होती है, छठी, भावार्थ। जिस प्रकार धनवान पुरुष यह भिन्नता में स्वस्वामी संबंध है, उसी प्रकार गुण पर्यायवान द्रव्य यह संबंध नहीं है। जैसे धनवान धन वाला पुरुष, धन भिन्न है और पुरुष भिन्न है, ऐसे गुण पर्याय वाला द्रव्य में वो गुण पर्याय जुदा है और द्रव्य जुदा है, ऐसा है नहीं। अथवा जैसा आधार आधेय भाव भित्ति और चित्र में है, वैसा गुण और द्रव्य में नहीं है, किंतु कारक और आधार आधेय दोनों ही अभिन्न है, यानी वो उसी के समुदाय को यहाँ द्रव्य संज्ञा दी गई। 80 नंबर। दृष्टान्तश्चाभिन्नो वृक्षे शाखा यथा गृहे स्तंभ अपि चाभिन्न कारक इति वृक्षोऽयं यथा हि शाखावान्। ये ऊपर तो भिन्न कारक और भिन्न आधार, यानी वो आधार आदेय की भिन्नता का दृष्टांत दिया, अभी अभिन्न कारक और अभिन्न आधार आधेय की बात वो दृष्टांत द्वारा बताएंगे। आधार आधेय की अभिन्नता में दृष्टांत इस प्रकार है, जैसे वृक्ष में शाखा अथवा घर और खंबा, यानी खंबा एक घर का ही एक पार्ट है ना, एक अवयव है उसका, तो घर में खंबा कहने से वो तो घर का ही एक विभाजन, वैसे ही वृक्ष में शाखा, तो वृक्ष कोई अन्य हो और शाखा अन्य ऐसा नहीं, अभिन्न ही है, फिर भी उसमें ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। कारक की अभिन्नता, ये न डबल न है, उत्तर जैसा दिख रहा है। कारक की अभिन्नता में दृष्टांत इस प्रकार है, जैसे यह वृक्ष शाखा वाला है, वाला कह दिया ना यहाँ पर, संबंध बताया, पहले आधा नाधे बताया था, वृक्ष में शाखा है और संबंध में यह वृक्ष शाखा वाला है। यहाँ पर वृक्ष और शाखा तथा घर और खंभा दोनों ही अभिन्नता के दृष्टांत हैं। वृक्ष में शाखा जुदा पदार्थ नहीं है, वो तो वृक्ष का ही अंग है, और घर में खंभा जुदा पदार्थ नहीं है। इसी प्रकार वृक्ष शाखावान है, यह स्वस्वामी संबंध की संबंध भी अभिन्नता का है। इन्हीं अभिन्न आधार आधेय और अभिन्न कारक के समान गुण पर्याय और द्रव्य को समझना चाहिए, यानी गुण पर्याय का समुदाय वही द्रव्य है, द्रव्य में गुण पर्याय कहने से जैसे वृक्ष में शाखा है वो अभिन्नता को ही सूचित करने वाला है। ख्याल में नहीं बताती, अभिन्नता को सूचित करने के लिए आधार आधेय का भी उदाहरण दिया और कारक का भी, यानी संबंध वाला कारक उन्होंने बता दिया। अब 81 नंबर पर शंका है फिर यहाँ पर,
समवाय समवायी यदि वास्या सर्वथा तदेकात् समुदायो वक्तव्यो न चापि समवायवान इति चेत्।
समवाय और समवायी अर्थात गुण और द्रव्य दोनों ही सर्वथा एकार्थक है, ऐसी अवस्था में गुण समुदाय ही कहना चाहिए, द्रव्य को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी गुण समुदाय ऐसा ही कहेंगे, द्रव्य नाम क्यों दिया उन्होंने, ये कहना चाहते, ये शंका है। और उसका समाधान 82 से 84 तक, प्रथम 82 को पढ़ेंगे हम।
तन्नयतः समुदायो नियतम समुदायिन प्रतीतत्वात् व्यक्त प्रमाण साधित सिद्धत्वाद् वासु सिद्ध दृष्टांता।
उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, तन्न यतने क्योंकि समुदाय नियम से समुदाय का होता है, हम कहें समुदाय है तो हम कहें किसका है समुदाय, गुणों का समुदाय कहें। यह बात प्रसिद्ध प्रमाण से सिद्ध की हुई है और प्रसिद्ध दृष्टांत से भी यह बात सिद्ध होती है। भावार्थ, यद्यपि सीपों का समूह ही सोहनी यानी झाड़ू है, तथापि सीपों के समुदाय से ही घर का कूड़ा दूर किया जाता है, सीपों से नहीं। सीखने भी एक एक गोष्ठी, हाँ एक एक जो है ना झाड़ू के एक एक कांड, पहले के जमाने वो झाड़ू बनते थे, आपने देखे मराठी में केरसू नहीं कहते, वही होगी ना,
झाड़ू वाला,
ये फूल झाड़ू, ये आजकल हम ये ऐसा यूज करते हैं, पहले के जमाने वो तो अलग था ना,
पानी में नहीं वापस सकते,
फूल साफ करने में नहीं लगता, घर के यहाँ बम्बई के और गांव के जो जमीन है उधर तो खराट ही लगता है। एसिड वाली क्या बोले
सही बात सीखों से नहीं यानी उस समुदाय से कर सकते एक एक सीख से नहीं कर सकते इसलिए समुदाय और समुदायी कथनचित भिन्न भी है और कथनचित अभिन्न भी है। दृष्टांत मोटा है केवल समुदायांश में ही इसे घटित करना चाहिए समुदाय के अंश में ही घटित करना चाहिए वो एक एक अंश से वो कार्य नहीं हो सकता। 83
समुदाय अंश जो कहा वो ही समुदाय ही
हाँ समुदायांश यानी समुदायी समुदाय यानी गुणों का समुदाय वो द्रव्य हुआ
माने समुदाय द्रव्य
हुआ हाँ पूरा समुदाय मिलकर क्या हुआ द्रव्य हुआ किस किसका समुदाय है गुणों का ये बात उन्होंने पहले लिखी थी
समुदाय द्रव्य का और समुदाय गुणों का ये देखो पेज नंबर 15 पर है
15 पे भावार्थ में 44 का भावार्थ गुण समुदाय को द्रव्य कहा है तब तो समुदाय गुणी को समुदाय को गुणी यानी द्रव्य और समुदायी को गुण कहते हैं।
समुदाय को गुणी और समुदाय को गुण और हम गुण गुणी में गुणी को वैसा यहाँ नहीं
यहाँ उल्टा है और यहाँ उन्होंने 81 के अर्थ में समवाय समवायी अर्थात गुण और द्रव्य वहाँ तो लिखते समय उनको तो ऐसा लिखना था द्रव्य और गुण यानी समवाय गुण के लिए है और समवाय ये द्रव्य के लिए है। ये हमने पढ़ा ना अभी 83 को पढ़ना है अभी है समय है थोड़ा स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण भिन्ना यथा रसाल फले कथमपि हि पृथक् कर्तुं न तथा शक्या स्वखंड देशत्वात् यद्यपि आम के फल में स्पर्श रस गंध और रूप भिन्न भिन्न है क्योंकि इनके लक्षण भिन्न भिन्न है पहले ये बात आई थी क्योंकि वो अन्य अन्य इंद्रियों का विषय है ऐसा लिया था यहाँ अलग अर्थ में उसको ले लीजिए तो इनके लक्षण भिन्न भिन्न है तथापि सभी अखंड रूप से एक रूप है यानी वो सर्वथा भिन्न भिन्न है अखंड रूप से है क्योंकि उन्हीं देशांशों में सभी पाए जाते हैं किसी प्रकार जुदे जुदे नहीं किए जा सकते क्योंकि जितने क्षेत्र में एक गुण है उतने ही पूरे क्षेत्र में दूसरा गुण है। भावार्थ स्पर्श का ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से होता है रस का ज्ञान रसना इंद्रिय से होता है गंध का ज्ञान नासिका से होता है और रूप का चक्षु से होता है इसलिए ये चारों ही भिन्न भिन्न लक्षण वाले हैं। पहले ये बात उन्होंने सिद्ध की थी कि प्रत्येक गुण अपना अपना भिन्न लक्षण वाला है किंतु चारों का ही तादात्म्य संबंध है कभी भी जुदे जुदे नहीं हो सकते इसलिए लक्षण भेद से भिन्न है यानी उसमें क्षेत्र की भिन्नता नहीं है समुदाय रूप से अभिन्न है अतएव गुण और गुणी में कथनचित भेद और कथनचित अभेद स्पष्टता से सिद्ध है यानी वो जो उनका समूह है वो कभी ऐसा अलग जुदा नहीं होगा ख्याल में थी ना यही बात यहाँ कहते हैं फिर भी गुण और गुणी में कथनचित भेद और कथनचित जैसे हम कहें उनके दो नाम अलग अलग है उनके लक्षण अलग अलग है प्रयोजन अलग है परंतु भाव एक ही है ऐसे यहाँ पर कथनचित भाव अलग है और भाव भिन्नता द्रव्य क्षेत्र काल लक्षण संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्नता है और भाव से
भिन्नता
क्षेत्र से अखंडता द्रव्य क्षेत्र और काल एक ही है अभेद है भाव से भिन्नता यानी संख्या संज्ञा लक्षण और प्रयोजन भिन्नता है द्रव्य क्षेत्र और काल की अभेदता काले अभेद भावे भिन्नता बराबर इसको एक ले लेते हैं तो यहाँ विषय हो जाता है 84 अतएव यथा वाचा देश गुणांशा विशेष रूपत्वात् वक्तव्यं च तथा स्यात् एकं द्रव्यं त एव सामान्या अतएव जैसे पर्यार्थिक नई की अपेक्षा देश देशांश गुण गुणांश इन सब का कथन करना चाहिए यानी भेद करने की अपेक्षा से वैसे ही द्रव्यार्थिक नई की अपेक्षा यानी सामान्य से उन सब के स्थान में एक द्रव्य ही है ऐसा भी कथन करना चाहिए यानी द्रव्य को ही हमको स्पष्ट करने के लिए जानने के लिए सभी भेद करके कथन करना है तो उसी समय पूरी वस्तु है ना वो द्रव्यार्थिक नय का भी विषय वहीं पर है तो द्रव्यार्थिक नय से उन सब के लिए एक द्रव्य ही है ऐसा कहना चाहिए ये श्लोक का जो प्रमाण है 75-84 का आशय 85 का गाथा 45-52 पर से लिया गया है अब आगे का विषय यहाँ से भेद दृष्टि का निरूपण है वो हम कल देखें
जामानी के ज्ञान से सूझे